ओम शांति। तो 7 तारीख की है साकार मुरली, जिसको अलग अलग तरीके से रिवाइज करेंगे, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट हमको मिला है कि उसमें पात्र कौन कौन से हैं और उन पात्रों का कर्तव्य क्या है। तो साकार मुरली में बहुत सारे पात्र होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने काल की मुरली से 7 पात्र निकाले हैं, जिनके क्या क्या कर्तव्य हैं उसको हम देखेंगे। तो जनरल तो बहुत सारे पात्र होते हैं जो डेली आते हैं, माया डेली आती है, रावण आता है, बाबा आता है, शिव बाबा आता है। तो कल की मुरली में एक है पात्र मुसाफिर। तो मुसाफिर जो होता है उसका क्या कर्तव्य होता है, जब मुसाफिरी पर निकलता है तो उसके सामने उसकी मंजिल होती है, वो मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते में साइड सीन नहीं जाता है। वो अगर उसको समय पर पहुंचना है, उसको समय का ख्याल रहता है और जहां उसको जाना होता है उसका पूरा लक्ष्य स्पष्ट होता है, कितने समय में पहुंचना है, क्या किस किस से मिलना है, किस किस से नहीं मिलना है। और मुसाफिर मंजिल पर पहुंचते समय बीच में इधर उधर नहीं जाता है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, व्यर्थ नहीं जाता है। लक्ष्य स्पष्ट होने के कारण उसमें उमंग उत्साह भी रहता है और हिम्मत भी रहती है अचीव करने के लिए, उसका क्लियर है, विजन क्लियर है, तो वो मुसाफिर समय पर अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। उसी तरह हम भी मुसाफिर हैं इस संसार में, ये दुनिया रहना से रहना, घर में रहना, घर तेरा है, मुसाफिरी पर निकले हैं। तो मुसाफिर थोड़े समय के लिए होता है, हम भी यहां मुसाफिरी करते करते अभी इस स्टेशन पर थोड़ा समय रुके हैं, वापस अपने घर लौटना है। तो मुसाफिर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है, यात्रा को समय पर, निर्धारित समय पर उसको पूरी करता है। तो ये पहला था मुसाफिर। दूसरा, आशिक माशुक को बाबा ने याद किया। तो आशिक माशुक जो होते हैं संसार के, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो बाबा बताते हैं जो आशिक माशूक है उनका जिस्मानी प्यार नहीं होता है, वो केवल एक दो के शरीर को याद करते हैं। लेकिन आजकल बदल गया हुआ है, हमारा भी बाबा से प्यार है, हम आशिक हैं, बाबा माशूक है, लेकिन हम आत्माओं का प्यार बाबा से जो है, जैसे भक्ति में कह दिया आत्मा सो परमात्मा, हमारा दोनों का इतना प्यार हो गया जैसे एक तो में लीन हो गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई, ऐसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है। तो हम आत्माओं का निस्वार्थ प्यार बाबा से है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्यार देता है, निस्वार्थ रूप से हमारी पालना करता है, निस्वार्थ रूप से वो पढ़ाई पढ़ा रहा है, निस्वार्थ रूप से वो वर्षा दे रहा है। तो आशिक माशुक जो है एक इस संगम युग पर हमारा ही, जो भी हमारा इसमें कर्तव्य है वो गायन रूप में बाद में भक्ति मार्ग में चलाता है। तो सच्चे आशिक बाबा कहते तुम हो बच्चे हो, है ना, एक सच्चा माशुक बाप है जिसके साथ हमको संबंध जोड़ना है। तो आशिक माशुक कर्तव्य संसार में मिसाल बनते हैं, तो हम सब आत्माएं भी एक संसार के लिए मिसाल बन रहे। तो हमारा कितना पवित्र प्यार है, शुद्ध प्यार है, कितना समर्पण भाव है, वो एक दो के प्रति उनका समर्पण होता है आशिक माशुक का, आपस में पारदर्शिता होती है, आपस में किसी प्रकार का कोई अंदर में भेदभाव नहीं रखते हैं, जो अंदर बाहर एक जैसा है। तो ये दूसरा पात्र था आशिक माशूक। तीसरा पात्र है ड्रामा। ये जो ड्रामा है ये बहुत कुछ सिखाता है, ड्रामा अपने आप में अचल अडोल रहता है, किसी को स्थैर्यम रहता है, कल की मूल्य में स्थैर्यम भी था, अचल अडोल स्थैर्यम, तीन बातें, किसी को देख के हलचल में नहीं आता है वो, ड्रामा जैसे ड्रामा की अवस्था निर्लेप अवस्था है, उसके ऊपर किसी का लेपशेप नहीं होता है, जैसे वो साक्षी है। तो ड्रामा भी हमको बहुत कुछ पढ़ाता है, अचल अडोल स्थैर्यम कैसे रहना है, दूसरे के पार्ट को देखकर साक्षी कैसे रहना है, प्रभावित नहीं होना है, चाहे किसी में अवगुण है या गुण है। तो ड्रामा भी हमको बहुत सारे पाठ पढ़ाता है। कितने पात्र हो गए? 4 सुन लिए, अच्छा 3 हो गए, ठीक है। चौथा पात्र है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, कोई काल की मूल्य में बहुत सारी बातें आती हैं। तो बाप दादा नई सृष्टि के निर्माण के लिए जैसे बाबा परमधाम से अवतरित हुए हैं, नव सृष्टि के स्थापना करता है वो, तो बाबा का कर्तव्य है वो ही हम बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए कि इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए बाबा बच्चों को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए हमको रोज वरदानों से पालना करते हैं, शक्ति देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमारी कमी कमजोरियों को भी बड़े प्यार से बताते हैं। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं जो बहुत अच्छे स्मार्ट डॉक्टर होते हैं, तो बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए उसको पता भी नहीं चलता इंजेक्शन लगा दे कि नहीं लगाया, इतना प्यार से फूंक मार के, जैसे चूहा काटता है तो कैसे काटता है, फूंक मार के पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। लेकिन बाबा हम सबको ऐसे प्यार से धीरे 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 अनेक प्रकार के, तुम पहले बंदर बुद्धि थे, फलाना थे, डिमके थे, डायरेक्ट नहीं बोलता बाबा, पहले प्यार से हमारी पालना देगा, सुमान में स्थित करेगा, फिर हमको बोलेगा तुम थे ना बंदर बुद्धि। तो बाबा ऐसे है कि नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए हमारी कमी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए कैसे नई सृष्टि के कर्तव्य के लिए हमको उसमें मददगार बनाता है। कर्ण करावनहार तो बाबा ही है, लेकिन फिर भी हम बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए, ऊंच तकदीर बनाने के लिए हमें कैसे प्रोत्साहित करते हैं, तो ये बाबा का कर्तव्य है। जैसे बाप बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो हम आत्माओं को भी कर्तव्य के अन्य आत्माओं को भी उसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहें। ये चौथा पात्र था कौन, बाप दादा, दोनों इकट्ठा कर दिया। और नेक्स्ट है स्पीकर, बाबा ने कल भाषण को याद किया, तो स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है, जो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं, वो पहले सारी ऑडियंस को परखने की शक्ति होती है, सामने वाली ऑडियंस जो बैठी है किस तरीके से उनको संबोधित करना है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सी परिस्थितियां हैं या कौन सा सब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, उसी के अनुरूप उसका सारा फोकस होता है। और सबको एकाग्र कैसे करना है, सबका मन इधर उधर नहीं भागे, उसमें रमणीकता भी हो, गंभीरता भी हो, मनोरंजन भी हो, किसी को कोई आलस सुस्ती ना आए, सबको जागरूक कैसे रखें, तो एक अच्छे वक्ता के कर्तव्य होते हैं। और उसको समय की का भी ज्ञान रहता है, जितना समय मिलता है उसी के अनुसार वो अपना पूरा कार्य करता है, जो स्टेज पर बैठे हुए उनका कैसे आदर सत्कार करना है वो सब चीजें देखता है, कैसी स्पीड से बोलना है वो भी उसको पता होता है, और सब चीजें वो याद रखता है। जैसे बाबा ने कहा कल के अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स याद रखते हैं लेकिन कई बार जाकर भूल जाते हैं, तो बाबा ने कहा बार बार रिवाइज करो, डायरी में लिखो, उसके ऊपर देखो कौन सी गलती रह गई, कौन से पॉइंट भूल गए। तो ये स्पीकर्स का कर्तव्य होता है कि जिस तरीके से सामने वाले को वो माल परोसना है, प्रस्तुत करना है, तो पहले से उसकी पूरी तैयारी रहती है। तो एक था पात्र कौन सा, कितना, पांच, स्पीकर। फिर बाबा ने माया को भी याद किया है, कल की मुरली में था माया क्या करती है, हाँ गुस्सा मारती है। तो माया वास्तव में हम सबको जागरूक करती है, माया बाबा की बेटी है, माया जैसे अथक है, माया कभी थकती नहीं है और हर समय वो एक्टिव रहती है, अलर्ट रहती है, तो हमको पाठ पढ़ाती है बाबा के माया भी कि तुमको भी एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। तो माया जैसे रावण है, जैसे वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहती है, हम बच्चों को उस तरह से सजग रहना है, है ना। माया छोटा बड़ा नहीं देखती, नया पुराना नहीं देखती, सबको बाबा के अंत तक तो माया आती रहेगी। तो जैसे माया निरंतर है, अथक है, वो एकदम एक्टिव है, उसी तरीके से हम बच्चों को भी एक्टिव रहना है। तो वैसे तो माया की बहुत सारी बातें होती है, माया क्या क्या करती है, नाक से पकड़ती है, या माया शत्रु शतकम, माया शतकम, हाँ माया के बहुत सारे रूप हैं कि क्या क्या माया करती है, तो माया हम माया के बारे में चिंतन कर सकते हैं। ये था छठा स्पीकर, छठा पात्र। और सातवां फिर बाबा ने महारथी को भी याद किया, महारथी क्या करते हैं, चार्ट नहीं, वो तो चंडिका देवी वाले थे, चार्ट रखते हैं, नाम रूप में भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा वो थोड़े गिने चुने महारथी, गिने चुने होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, तो हमको देखना है कि नाम रूप में कहीं हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। महाअर्थी अर्थात जो महान कर्तव्यों के लिए अवतरित हुए हैं, जो अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति वो नजरअंदाज नहीं रहते, हो उनके प्रति आलस अलवेलापन नहीं है, उनको पता है हमारे कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं संसार को परिवर्तन करने के लिए, तो वो अपना छोटी मोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो उनके सामने लक्ष्य है उसके प्रति पूरा उनको सजग रहते हैं, उनकी उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है, तो ये महारथी था। और भी बहुत सारे पात्र हैं, चंडिका देवी थी, लेकिन वो तो बढ़ना ही नहीं है अपने को, चंडिका देवी। फिर लक्ष्मी नारायण थे उसमें, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पात्र बहुत सारे मुरली में होते हैं। तो अगर हम चिंतन को लंबा खींचते जाएंगे तो जितना मर्जी चिंतन कर सकते हैं, तो चिंतन करने की युक्तियां हैं। ओम शांति।
ओम शांति। कल की साकार मुरली से जो मुझे टॉपिक मिला है वो था कि आपको 7 बातें जो है वो ग्रहण करनी है, धारण करनी, और 7 बातें जो है वो आपको ग्रहण नहीं करनी है। तो कल की मुरली से फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर, जिसके लिए बाबा ने हमें कहा है चरित्र। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं जो ले परीक्षा तेरी। कहने का इन द सेंस मीनिंग ये है कि यदि आप पवित्र हो, पावन हो, आपका कैरेक्टर सुधरा हुआ है, तो किसी की ताकत नहीं होती जो आपकी परीक्षा ले सके। तो कल बाबा ने कैरेक्टर के लिए कहा है कि बच्चे यदि आपको आपका कैरेक्टर सुधारना है तो आपको अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, पोतामेल रखना है। और यदि आप आपका सच्चा सच्चा चार्ट रखते हैं तो आप इसमें कुछ बातें नोट कर सकते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा है कि चेक करें बच्चे दिन भर में आपका कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, नेक्स्ट दिन भर फालतू बातें तो नहीं की, दिन भर में कितना समय आपने खुद को आत्मा समझकर बाप को याद किया। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं आत्मा कैसे समझें, तो दिग्गज लोग हमें समझाएंगे कि कैसे आत्मा समझना है। तो दिन भर में आत्मा समझकर कितना समय बाप को याद किया, कितना समय आप समान दूसरों को बनाया है, कितना समय देवी गुणों को धारण किया है, और हाँ स्वदर्शन चक्र कितने समय फिराया, और है कि बाप के साथ मिलकर या बाप के साथ कितनी सेवा की है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स में बाबा ने कहा है कि हम अपना सच्चा सच्चा चार्ट रख सकते हैं। सेकंड है स्वधर्म में टिकना है आपको, स्वधर्म शांति। तो कल बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जब आप बिल्कुल साइलेंस में होते हैं बच्चे, तो ये दुनिया आपसे भूल जाती है। और ये पूरा खेल जो चल रहा है वो इसी का है कि हमें इस दुनिया को भूलना है, तो बिल्कुल साइलेंस की स्थिति में आना है। बाबा ने कहा जब आप स्वधर्म में होते हो तो क्या होता है, बाबा ने कहा फर्स्टली आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है, सेकंड है कि आपकी आयु बढ़ती है, फिर है आत्मा पवित्र बन जाती है। तो आपको बाबा को याद करना है अपने स्वधर्म में टिककर। बाबा ने कहा है कि जब आप स्वधर्म में होते हो ना तो मेरी याद ज्यादा ठहरती है, तो आपको आपके स्वधर्म में टिकना है। फिर थर्ड पॉइंट है जो बाबा ने कहा है कि आपको बाबा की कशिश का पात्र बनना है। कल बाबा ने बार बार कशिश शब्द यूज किया है, कशिश यानी जो खींच लेता है, और बाबा ऐसा है जो हमें खींचता है। तो हमें क्या करना है, बाबा की कशिश का पात्र बनना है। पर कैसे बनेंगे, तो बाबा ने कल बताया कि बच्चे मैं जो हूं ना एवर प्योर हूं, हमेशा पवित्र हूं, मैं चुंबक हूं, पवित्र चुंबक हूं, जो आपको क्या करता हूं, अमृत वेले सवेरे से आपको खींच लेता हूं, और जब मैं आपको खींचता हूं तो आप मेरे पास यहां पर बैठ पाते हो। तो हमें क्या करना है, बाबा की कशिश का पात्र बनना है। फोर्थ है हमें पूरा पूरा, हाँ इसमें एक आशिक माशुक का एग्जाम्पल भी बाबा ने दिया है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन जैसे उसको याद करते हैं तो चित्र क्या होता है, सामने आ जाता है। तो ऐसे ही आपको मुझे याद करना है, कशिश से याद करना है। फोर्थ है हमें पूरा पूरा राजयोगी बनना है। तो राजयोगी कैसे बनेंगे, तो इसके लिए बाबा ने ज्ञान और योग में थोड़ा सा डिफरेंस करके बताया। बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान जो होता है ना वो सस्ती सब्जेक्ट है, नया पॉइंट यूज किया है कि सस्ती सब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ इनकम है, इससे आप अपना इनकम कर सकते हैं। बाबा ने कहा सरल है, आप 84 जन्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान इजीली धारण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन याद के लिए बाबा ने कहा है कि बहुत भारी माल है याद की यात्रा, इसमें मेहनत है, ज्ञान में युद्ध नहीं है। बाबा ने कहा मेहनत याद की यात्रा में युद्ध है। तो आपको क्या करना है, पूरा पूरा राजयोगी बनना है। एंड फिफ्थ पॉइंट है जो कल बाबा ने नया शब्द यूज किया था कि आपको मुरलियों के पॉइंट का वजन करना है। वजन इन द सेंस कि कितना गूढ़ार्थ भरा हुआ है उनमें, वो कितने रहस्य वाले पॉइंट है, तो उन पॉइंट्स को आपको अलग से निकालना है, चिंतन मनन करना है और फिर उसको धारण करना है। कल बाबा ने बहुत सारा कहा कि भाषण करना है तो भी आपको क्या करना होता है, पहले नोट्स बनाओ, लिखो, पॉइंट्स निकालो, चिंतन करो, पढ़ो बार बार, समझो और फिर उसमें करेक्शन करके फिर आपको बोलना है, तभी तीर लगने वाला है। फिर बाबा ने बार बार कहा मुरलियों के पॉइंट्स को आपको, हाँ, और यदि मुरलियों के पॉइंट्स निकालते हो तो ही आप ज्ञान में उछाल खा सकते हो। उछाल खरगोश होता है, उछल के चलता है तो कितना स्पेस कवर कर लेता है, ऐसे ही आपको ज्ञान में उछालना है। तो बाबा कह रहे हैं आपको ज्ञान में उछलना ही, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी ना, बाबा की याद नहीं ठहरेगी, तो पॉइंट्स का चिंतन चलेगा तो बाबा की याद ठहर जाएगी। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, बाबा ने कहा कि बाबा सच्चा बाबा है तो सच्चे बाबा के साथ आपको सच्चा सच्चा लव रखना है, सच्चे प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा ने कल कहा कि बाबा ही सब कुछ है, बाकी यदि बाबा याद है तो ये दुनिया भूल जाती है। और इसके लिए बाबा ने शब्द यूज किया है कि जब ऐसी अवस्था होती है इसको बड़ी मीठी अलौकिक अवस्था कहते हैं, और जब बड़ी मीठी अलौकिक अवस्था में आप बच्चे ठहरते हैं और ऐसी अवस्था में ठहर कर जब आप बाबा को याद करते हैं तो आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा है आपको क्या करना है, सच्चे बाबा को सच्चा सच्चा याद करना है। एंड लास्ट सेवंथ पॉइंट है, आपको श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे प्यारे बाबा ने कल बताया है कि आपको तीन स्मृतियों का तिलक अपने मस्तक पर धारण करना है। फर्स्ट है स्वयं की स्मृति, मैं कौन, सेकंड है बाबा की स्मृति, थर्ड है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। यदि ये तीनों स्मृति का तिलक आपके मस्तक पर है तो बाबा ने कहा आपकी स्थिति श्रेष्ठ होगी और आप अचल अडोल रह सकते हैं। उसके बाद में बाबा ने स्लोगन में कहा है कि आपकी दृष्टि अलौकिक होनी चाहिए, आपका मन शीतल, शीतल शब्द में शीतलता है, जैसे शीतल शब्द बोलो तो ऐसा लगता है कि ठंडे हो गए हैं, तो मन को कैसा रखना है, शीतल रखना है, और आपकी बुद्धि को रहमदिल बनाना है। तो ये कुछ बात, बहुत सारी और थी पर अभी इतनी निकाली है। तो सेवन पॉइंट जो हमें धारण करने, अब सेवन पॉइंट है जो हमें ग्रहण नहीं करना है। तो फर्स्ट है बाबा ने कल कहा बच्चे आपको मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ करने वाले, अपने मुंह से अपनी तारीफ, हम तो शिव बाबा को इतना याद करते, इतना चाट रखते, बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू बनकर अपने को ठगना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, माया आ जाएगी और माया जोरदार घूसा लगा देती है। आपको शिव बाबा को याद करना है लेकिन सच्चा सच्चा अपना चार्ट भी रखना है, आपको मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। जैसे कहा है ना कि सिद्धांत है, बाबा कह रहे हैं कि जो करेगा सो पाएगा और जो नहीं करेगा सो पछताएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट है आपको सिर्फ इतने में खुश नहीं हो जाना है बच्चे की, हम तो शिव बाबा के साथ बैठे ही तो हैं, बाबा के साथ हैं, तो बाबा ने कहा है कि आपको इतने में खुश नहीं हो जाना है। बाबा कहते हैं आप जो याद करते हो ना वो तो मैं कोशिश करता हूं कि आप आधा पौना घंटा मेरे पास बैठते हो, बाकी चेकिंग करो कि सारा दिन में आपने कितना व्यर्थ चलाया, कितना समय गवाया। और एक लाइन बाबा ने बहुत अच्छी कही है कि जो समय गवाया उससे आपको फायदा क्या हुआ, उसकी चेकिंग करो। तो सेकेंड पॉइंट है हमें इतने में ही खुश नहीं होना है। थर्ड है कि आपको ऐसा नहीं करना है, बाबा ने कहा कि भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं तो हमें चार्ट रखने की दरकार नहीं है, चार्ट तो आपको रखना है क्योंकि महारथी भी अपना चार्ट रखते हैं, क्यों रखना है, हाँ वो तो सुधरेगा। और लेकिन बाबा ने जो कहा है क्यों चार्ट रखना है, तो बाबा ने कहा है ये बहुत भारी मंजिल है तो उसके लिए आपको चार्ट तो रखना है। एंड फोर्थ है बाबा ने कहा किसी के नाम रूप में चलायमान नहीं होना है, प्रकाशित होना है, प्रभावित नहीं होना है, हमें उनसे लेकर प्रकाशित हो जाना है। फिर बाबा ने कहा है कि इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं, बच्चे ख्यालात चलाते हैं कि बच्चों हमारे बच्चों के लिए मकान बना दें, उनके लिए प्रबंध कर दें, तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा है, बाबा का भी ड्रामा है, तुम्हारा भी ड्रामा है, हमारा भी ड्रामा है, तो इन सब चीजों को ड्रामा को ध्यान रखना है लेकिन बुद्धि को चलायमान नहीं करना है। कितने हो गए, छह, पांच, दो बाकी, ये फिफ्थ है। सिक्स्थ है किसी को दुख नहीं देना है, कल की मुरली में स्टार्टिंग में कहा बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, फालतू बातें नहीं करना है, और पढ़ाई में गफलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि बाबा देखता है, देख रहा है बैठकर के बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा बोलते बच्चे सेंटर से आते हैं तो मैं उनकी शक्ल से देख लेता हूं कि इनके अंदर कितना लव है, कितना प्यार है इनको बाबा से, तो मैं यहां बैठकर देख रहा हूं, इसलिए पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। एंड लास्ट सेवन पॉइंट है, बहुत अच्छी लाइन मुरली में जो अच्छी बात कही बाबा ने कल, मुझे जो लगी है, बाबा ने कहा मुफ्त में किसी की महिमा नहीं करनी है। क्यों? मुफ्त शब्द यूज किया बाबा ने, क्योंकि ये जो पढ़ाई है बच्चे, ये बहुत मेहनत की पढ़ाई है। यहां पर आपको बाबा ने कहा है कि कितनी मेहनत करना पड़ रहा है तब जाकर आप कहां बन रहे हो, इसलिए बाबा ने कहा मुफ्त में किसी की महिमा नहीं करना है, याद का चार्ट रखना है। चलिए, तो बाबा ने ऐसे 7 पॉइंट कल की मुरली से जो धारण करने और 7 पॉइंट जो धारण नहीं करने। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो मुझे टॉपिक मिला था कल की मुरली से बाबा ने भक्ति मार्ग में क्या क्या याद किया है। तो सबसे पहले है, बाबा ने कहा है कि भक्ति मार्ग में अनेकों का नाम लेते हैं। जैसे हमारे भारत में ही देख लो, भारत में अलग 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 जगह पे अलग अलग भगवान होते हैं। तो बाबा ने इससे ही एक दूसरी पॉइंट कहा है कि चंडिका देवी जैसे कैसे कैसे नाम रखते हैं, कि चंडिका देवी का भी नाम है। तो ये दूसरा बाबा ने चंडिका देवी को याद किया था। तीसरा बाबा ने कहा था कि भक्ति मार्ग में आंसू भी बहाते हैं। तो ये तीसरी है, मैंने इस जन्म में भक्ति की नहीं। और फिर आगे बाबा ने चौथा कहा है कि जैसे देवताओं को भी, मतलब आपको भी पूजेंगे और देवताओं को भी पूजेंगे। फिर बाबा ने कल की मुरली में माला को भी याद किया है और वरदान में तिलक को भी याद किया बाबा ने। और फिर बाबा ने एक स्वदर्शन चक्र भी याद किया था। ऐसे ही फिर बाबा ने कहा, ये सब कहने के बाद बाबा ने बीच में मुरली में भी कहा है कि भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। तो फिर एक बाबा ने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया है कि आग में से चलते हैं। तो जैसे कोई कोयले में या फिर बाबा ऐसा भगवान का नाम लेके वहाँ आग से चले जाते हैं और उनको कुछ नहीं हुआ है, हाँ कुछ नहीं होता है। तो ये बाबा ने भी उदाहरण दिया था। फिर बाबा ने कहा था कि बाहर के लोग कहते हैं आके पढ़ाओ नहीं कहते हैं, आके पावन बनाओ कहते हैं। तो ऐसे बाबा ने 7 बातें याद की थी। अच्छा, ओम बाबा ने तिलक मतलब अपनी 3 स्मृतियां धारण करनी है, ऐसा बाबा ने कहा था। स्व की स्मृति बाप को और ब्रह्मा को, बस। बाबा ने कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। याद की यात्रा के लिए बाबा ने कौन सी बातें याद की है, इस पर सवाल विचार सागर मंथन। पहली है, याद है तलवार की धार। तो तलवार की धार सुनते ही थोड़ा खौफनाक शब्द इमर्ज होता है, लेकिन वो है स्थूल तलवार और ये है सूक्ष्म तलवार है। ये इससे, इस तलवार से क्या होता है, पाप काट देते हैं और विकर्म विनाश हो जाते हैं और पावन बनते हैं। तो ये बड़ी सूक्ष्म तलवार है और तलवार की धार है और ये अपने अंदर धारण करनी है। फिर दूसरी पॉइंट थी, याद की यात्रा के लिए बाबा ने उदाहरण दिया था मासुक और आशिक का। तो जैसे दूर कहीं भी रहे, आशुक मासिक कहाँ भी रहे, कितने भी दूर रहे, लेकिन याद करते ही जैसे सामने आ जाते हैं। तो बाबा को भी हम कभी भी जब भी याद करें एकदम बाबा से मिलन मान रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। फिर तीसरी बात थी, बाबा जैसे चुंबक है, याद की यात्रा के लिए चुंबक, चुंबक क्या करता है, खींचता है,
जैसे ज्यादा कट होगी तो कम खींचेगा, कम खींचेगा, और कम कट होगी तो ज्यादा खींचेगा। तो अमृत वेले बाबा ज्यादा कशिश करते हैं, तो उस समय वातावरण एकदम शुद्ध होता है, शांत होता है, तो उस समय ज्यादा हम बाबा को याद कर सकते हैं और बाबा की कशिश होती है। और चौथी पॉइंट है पोता मेल रखना, याद की यात्रा के लिए पोता मेल बहुत जरूरी है। तो पोता मेल में जैसे पहली पॉइंट बाबा ने बताई कि अपने आप को आत्मा समझ, बाप को याद किया, याद करने से कट निकली, तो ये अपने आप को चेकिंग के लिए बाबा ने बताया था। दूसरी थी कि अपने आप समान कितने को बनाया, जैसे खुद को ज्ञान मिला तो दूसरों को भी ऐसा बनाया। फिर तीसरा है कैरेक्टर सुधरे, यानी कैरेक्टर में दिन में कोई बदलाव तो नहीं आया। तो इस प्रकार ये याद की यात्रा के लिए चार्ट बताया था। और बाबा ने कहा था कि जो जो करेगा सो पाएगा, पाएगा, और जो नहीं करेगा सो पछताएगा। तो ये याद दिलाया था बाबा ने कि चार्ट रखना बहुत जरूरी है। पांचवी पॉइंट है कि याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा था कि याद है भारी माल, तो भारी तो ये ज्ञान की भेंट में कहा था कि जैसे ज्ञान में आने के पहले तो हमें पहले ज्ञान ही भारी लगता है कि कोर्स कर डरते हैं ना, क्योंकि ज्ञान में आने के पहले हम डरते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से तो कुछ उल्टा उल्टा ना हो जाए, इसलिए डरते हैं तो भारी लगता है। फिर ज्ञान में आने के बाद ये सस्ती सब्जेक्ट हो जाती है, माना हल्का हो जाता है और योग भारी हो जाता है तो योग से ही जैसे बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी हम बुलाते थे कि आओ और पावन करो याद, लेकिन ये नहीं कहा कि पढ़ाओ, हम आह्वान करते थे कि आओ और पावन करो। फिर पॉकेट में डायरी रखने के लिए बोल, याद की यात्रा के लिए पॉकेट में डायरी जरूरी है, छोटी डायरी, कि जैसे बाबा अमृत वेले उठते थे पहले लिखते थे, फिर पढ़ते थे, कुछ रह गया तो फिर और शायद नोट करते होंगे, फिर बच्चों को सुबह गरम गरम सुना हलवा सुना, तो ऐसा पोता मेल रखना है। फिर और भी है, बाबा ने सच्चा प्रेम याद के लिए बोला है, सच्चा प्रेम। हाँ, तो सच्चा प्रेम जैसे भक्ति मार्ग में भी आंसू आ जाते हैं, और अभी ये ज्ञान मार्ग में हाँ ये नहीं है, आते हैं जो दिल से याद करते हैं उनको आते हैं, क्योंकि 63 जन्म भक्ति की है तो उसमें आंसू आते थे, लेकिन वो रियल हाँ घड़ियाली आंसू कहेंगे, लेकिन उसमें क्या था कि रियल जानते नहीं थे हम भगवान को, किसी को भी हाँ किसी भी मूर्ति के रूप में भगवान मान लेते थे, और 24 अवतार 10 अवतार सबको मान के ही हम उनसे जो प्राप्ति होती थी उससे कनेक्ट होके आंसू आते थे, लेकिन यहाँ रियल भगवान का परिचय मिल गया और अभी हम प्यार के आंसू आते कि फिर है मेहनत, याद के लिए बोला बाबा ने कि मेहनत मेहनत, लेकिन बाबा ने अविक्त मुरली में बोला कि मेहमत मेहनत को हटा दो, मुहबत है, मुहबत शब्द याद रखो तो पूरा हल्का ही है, तो इससे विश्व की बादशाही मिल जाएगी, 21 पीढ़ी के लिए विश्व के मालिक बन जाएंगे। हाँ, मोहब्बत से मेहनत से मोहब्बत। और एक पॉइंट है याद की यात्रा के लिए, जैसे भक्ति मार्ग में हम भगवान मानते थे विष्णु को, तो गाते थे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम विष्णु गरुड़ ध्वज, मंगल पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरी, तो ये गाते थे भगवान मानकर, लेकिन अभी हमें सच्चा भगवान मिल गया तो उन्हें कितने प्यार से याद करना है। और दसवीं पॉइंट है तीन एक्स्ट्रा कि याद की यात्रा के लिए तीन स्मृतियों का तिलक, क्योंकि वो रिपीट होगी कि तीन तिलक, हाँ तो सो की स्मृति का तिलक, बाप की स्मृति का तिलक और श्रेष्ठ धार स्थिति के लिए ब्रह्मा की स्मृति का तिलक। इस प्रकार से बाबा ने याद की यात्रा के लिए खास ये बातें बताई। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। हमारा टॉपिक था कि ये जो नॉलेज है वो वंडरफुल और चटपटा कैसे हैं। तो हमने सोचा कि जो भी चटपटी बातें हैं उनकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले चटपटी जो बात होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। जैसे हम बाजारों में देखते हैं तो खजूर का पैकेट देखो और लेज का पैकेट देखो, तो वो बहुत चटपटा रहता है, वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो हम इसको ज्ञान के साथ जोड़ेंगे एक एक बात। पहले चटपटी बातों की विशेषताएं क्या है, तो पहले वो तो अट्रैक्टिव होता है। दूसरी बात है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तीसरा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। चौथा, उसको बार बार खाने का मन करता है उसका, और बोर नहीं होते हैं कभी भी। और लास्ट बात होती है कि खुशी होती है, चटपटी बातें दिखाई देती है तो भी खुशी होती है। ऐसे हमारा ये ज्ञान भी बहुत चटपटा है। हम पहली बात है कि अट्रैक्ट करता है, हमें बहुत भाता है मन को। दूसरी बात है कि उसकी जो खुशबू है वो भी गुणों की खुशबू हमारे अंदर आ जाती है। तीसरी बात है कि टेस्टी भी बहुत है। ऐसे अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया है तो उससे अलग अलग अनुभूतियां भी होती है। फिर बार बार सुनने का भी मन करता है ज्ञान। जैसे बाबा को भी हम सुनते हैं तो फिर क्लासेस भी सुनते हैं, तो अलग अलग बार वो ज्ञान अलग अलग तरीके से सुनने का भी मन करता है, क्योंकि वो चटपटा है और कभी हम बोर नहीं होते हैं। अगर दिन भर भी कहा जाए अलग अलग क्लासेस भी सुनते हैं और मुरलियां भी सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान से हमें खुशी भी बहुत मिलती है। तो ये पांच बातें हैं जो ज्ञान चटपटी और वंडरफुल कैसा है। फिर कोई भी चीज़ जो चटपटी होती है या किसी चीज़ को चटपटा बनाना होता है तो उसको उसके अंदर मसाले ऐड करेंगे तो ही वो चटपटी लगती है। तो बाहर के दुनिया में जैसे आजकल का ब्रांड चल रहा है वो है एवरेस्ट का नंबर वन मसाला। तो हमने सोचा कि बाबा के घर में भी एक ही ब्रांड चलता है और वो नंबर वन ब्रांड है बाबा, एक ही ब्रांड है बाबा। और उन मसालों को थोड़ा सा विचार करें तो फिर उसमें अलग अलग होते हैं मसाले, अलग अलग पाव भाजी मसाला अलग है, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, ये मसालों के टाइप्स अलग अलग है। फिर अगर उन मसालों में भी देखें तो इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं। ऐसे बाबा के यहाँ भी है। हमें लगा कि एक ही ब्रांड फैक्ट्री है यहाँ पर, बाबा ब्रांड फैक्ट्री, और इसमें अलग अलग चीज़ें। तो बाबा ने कौन सी हमें वंडरफुल नॉलेज दी है। तो सबसे पहले बहुत सुंदर ज्ञान की जो बात बाबा ने कही है वो स्वयं की आत्मा के बारे में। तो आत्मा का जो ज्ञान दिया है वो चटपटा कैसे है, तो कभी बाबा कह देता है कि आप तो बिंदु हो, कभी कह देता आप तो मणि हो, कभी बोलेगा स्टार है, तो कभी बोलेगा और कुछ ज्योति है, कभी मणि है, कभी अति तेजस्वी है। माना अलग अलग प्रकार से वो आत्मा का ज्ञान भी चटपटा हमें लगता है। इसके साथ साथ आत्मा के लिए बाबा ने आत्मा के ज्ञान में और चटपटा बनाया, अलग अलग सोमान ऐड कर दिए, तो वो और चटपटा लगना और उसका टेस्ट आना शुरू हो गया। तो इस एक आत्मा के ज्ञान में वो पूरी पांच बातें भरी हुई है कि वो भी हमें अट्रैक्ट करता है। और ये ज्ञान दूसरों को भी, आत्मा का ज्ञान बाबा ने बताया, दूसरों को भी आत्मा देखो तो और चटपटा लगना और वंडरफुल लगना शुरू हो जाता है। उसमें भी बार बार करने का मन करता है और वो भी हमें खुशी प्रदान करता है। उसमें भी बहुत वैरायटी से हम याद करते हैं। दूसरी बात, शिव बाबा, तो शिव बाबा के बारे में भी बाबा ने बहुत चटपटा ज्ञान दिया है कि उसको आंखें भी नहीं है तो भी तो वो हमें देखता है, उसको कान तो नहीं है तो भी हमें सुनता है, उसको हाथ भी नहीं है तो भी वो हमें मदद करता है। तो कितना न चटपटा हमारा बाबा है। और बाबा के बारे में बाबा कभी कहता है मैं खिवैया बन जाता हूँ, तो कभी सौदागर बन जाता हूँ, तो कभी धोबी बन जाता हूँ, कभी रत्नाकर बन जाता हूँ, कभी धर्मराज बन जाता हूँ। तो ये अलग अलग बाबा ने जो बाबा के बारे में खुद के बारे में भी हमें बताया हुआ है, वो भी बहुत सुंदर और बहुत खुशी देने वाला, बार बार चिंतन करने वाला ज्ञान है, बहुत अट्रैक्टिव है। फिर तीसरी बात जो ड्रामा की कही हुई है, तो ड्रामा के बारे में भी उसमें स्वदर्शन चक्र आ जाता है, बाकी सभी बातें। तो जब हम स्वदर्शन चक्र का भी ज्ञान सुनने लग जाते हैं तो वो भी टेस्ट आना शुरू हो जाती है। जैसे हम पहले परम धाम में थे, फिर हम लोग सतयुग में आए, फिर द्वापर में आए, फिर यहाँ पे ब्राह्मण बने, फिर हम फरिश्ता बनने वाले हैं। तो फरिश्ता का भी जो भी क्वालिटीज है वो जो बाबा बता रहे हैं, तो वो भी हमें बहुत भाती है मन को, और बार बार वो फरिश्ते का भी अनुभव करने को मन करता है। फिर जो बाबा ने ज्ञान दिया है मनसा सेवा का, या सेवा के बारे में जो भी ज्ञान दिया है उसमें भी बहुत चटपटा है। सिर्फ एक प्रकार का नहीं बताया बाबा ने सेवा, हर कोई कर सकता है। नहीं क्या, कोई शरीर से बीमार है तो भला वो मनसा कर ले, जिसको कुछ मनसा नहीं आता है तो कुछ वाचा कर ले, जिसको सब आता है वो मनसा वाचा कर्मणा कर ले। तो बाबा ने ऐसा जैसे उस चटपटी बातों में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो यह बाबा ने सेवाओं के बारे में भी बहुत हमें, हमारे सामने बहुत सारा परोसा है कि हम कितना कितना ले सकते हैं और कैसा उसका आनंद ले सकते हैं। और बाबा ने लास्ट में और एक बात ज्ञान मुझे अच्छा लगा, वो है अव्यक्त संदेशों में जो भी ज्ञान बाबा ने बताया है, कि बाबा जब भी वो अव्यक्त संदेश बताते हैं तो कभी वी शेप खड़े करते थे, कभी चंद्रमा के रूप में खड़े हो जाओ, तो कभी बाबा पहाड़ी पे खड़ा है, और वैसे वैसे हमें अनुभव कराता है। तो लास्ट और लिस्ट इतना ही बताना चाहूंगी कि जब ज्ञान को देखते हैं तो भी चटपटा है। जैसे हमने नया नया पांडव भवन में आए, वो शोकेश में देख लिए कि सब कुछ ये है, तो बस अट्रैक्ट होना लगा है ना। ज्ञान को देखेंगे तो भी चटपटा लग रहा है, ज्ञान को सुन रहे रोज रोज 5 बजे आके फिर मुरली तो भी वो चटपटा लगता है, ज्ञान को देखो तो भी वो चटपटा है, ज्ञान को सुनो तो भी चटपटा है, और ज्ञान को बोलो तो भी वो बहुत वंडरफुल अट्रैक्टिव चटपटा लग रहा है, ज्ञान को अनुभव करो तो भी वो चटपटा लग रहा है, ज्ञान का मनन करो चिंतन करो तो भी चटपटा है। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। मुझे टॉपिक दिया गया था ये ज्ञान खटपटा क्यों है। खटपटा यानी उलझन, जब हमेशा हमेशा ज्ञान में चलते हुए खटपट होती है, तो जैसे बाबा कहता है ये जो आधार स्तंभ है, ये ज्ञान का आधार स्तंभ ही है संपूर्ण पवित्रता। और जब संपूर्ण पवित्रता नहीं होती और जब हमें डिफिकल्टीज आती है, तब ये ज्ञान हमें बहुत खटपटा लगता है। और हमारे 63 जन्म के संस्कार होते हैं, और ब्राह्मण बनने के बाद हमारे पुरुषार्थी संस्कार आते हैं, उसके बाद वो जो 63 जन्म के संस्कार होते हैं और ये ब्राह्मण बनने के बाद के संस्कार, इनमें हमेशा टकराव होता रहता है। और जब टकराव होता है तब हम न चाहते हुए भी ये ज्ञान जो है हमें खटपटा लगता है। और जब हम लोग आत्मा की स्मृति, बाबा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति, इस तीनों स्मृति का जब हमें विस्मरण होता है तब हमें ये ज्ञान खटपटा लगता है। बाबा कहता है कि मेरे पास चलो, बाबा हमेशा कहता है मैं तुम्हें साथ दूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ो मेरे साथ चलो, और उसी पल वो माया कहती है देख मैं तेरी साथी हूं, तुम मुझे नहीं छोड़ना, मैं कुछ भी करूंगी तेरे पीछे आऊंगी। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बाबा तो दिखता नहीं पर माया हम पे फिर भी वशीभूत हो जाती है, और वो हमें ना इतना अट्रैक्ट करती है, हम न चाहते हुए वो कार्य कर लेते हैं, तब हमें ये ज्ञान खटपटा लगता है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और जब हमारी जब स्थिति ठीक नहीं होती, चंचलता आ जाती है, हम लोग लौकिक और अलौकिक जब पेपर्स बहुत आते हैं और ब्राह्मण बनने के बाद कुछ ज़्यादा ही पेपर्स आते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि पहले की लाइफ थोड़ी बेटर थी क्या, और बाबा के बनने के बाद सबसे ज़्यादा पेपर्स आते हैं वो सेहत के पेपर्स आते हैं, मैंने वो अनुभव किया कि जब मैं बाबा की नहीं बनी थी तब थोड़े कम थे, जब बाबा की बन गई तब थोड़े ज्यादा पेपर्स आए। तब ऐसा लगा कि पर उस पल लगता है, पर उससे बाबा ही उभरता है, पल भर के लिए वो खटपटा लगता है, जब उसका हाथ थाम लो तो इजी हो जाता है। तो कभी कभी ये ऐसा हो जाता है कि तब ये ज्ञान खटपटा लगता है। और बाबा को हम लोग साथी बना ले, साथी बन के चले, और ये ड्रामा को वंडरफुल ये समझे, अपने कर्मेंद्रियों को, हमारे कर्मेंद्रियों को हम लोग जितेंद्रिय में यदि परिवर्तन करें, और सबसे जो चीज है कि हमने अपने, हम लोग अपने स्वयं की चेकिंग करें, हम लोग दिनचर्या, बाबा ने जो हमें दिनचर्या दी है यदि उसका चार्ट रखे, और हम लोग उसका चार्ट नहीं रखते और फिर हमें रियलाइज होता है, तब एक तो बहुत टाइम भी निकल जाता है और तब हम कभी कभी वो डिफिकल्ट बन जाता है, तब भी हमें यह ज्ञान खटपटा लगता है, क्योंकि लौकिक में रहते हुए सब मैनेज करना होता है। और बहुत बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये पढ़े वो पढ़े, जॉब, सारी लौकिकता हम में आ जाती है, परिवार का ध्यान रखना, ये रखना है, यहाँ का शेड्यूल बहुत अलग है। हम लोग यदि चाहे तो मुरली से जब आते हैं तो भाग के हमें स्कूल पकड़, स्कूल के लिए जाना होता है कि बच्चों को पढ़ाना है ये सब कुछ, और लौकिकता भी आ जाती है, तब वो जो डिफिकल्टीज आती है ना कि नुमा शाम योग करने और ट्यूशंस के लिए बच्चे आते हैं या कुछ गड़बड़ होती है, तब भी ये ज्ञान खटपटा लगता है। तो ड्रामा बहुत वंडरफुल है, और यहाँ पे जो पालना मिलती है, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये पालना ना खुद के मैके भी नहीं मिली, और इतनी सुंदर पालना है कि हम लोग जो सेवा करते हैं ना ये बहुत कम है, जितना रिटर्न देता है बाबा इतना लव करता, इतना लव करता है कि ये सपने जैसा लगता है। और ये सब जो बाबा का स्नेह है ना, ये सब समेट के यहाँ से जाने की इच्छा है। ओम शांति। मुझे कोई डिफिकल्टीज नहीं आई, जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे युगल हम लोग दोनों एक साथ ज्ञान में चले, तो जब सब लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि इतनी डिफिकल्टीज लोगों को आती है, तो हमने एक ही दिन कोर्स किया, ये जो गाड़ी के दो पहिए है ना, बाबा मिलन भी पहला दोनों ने साथ में किया। तो जैसे बोलते हैं ना कि संपूर्ण पवित्रता और ये सब धारणाएं, और बहुत डिफिकल्टीज आती है, बहुत टकराव होता है, और अपने अनुभव जब हम लोग सुनते हैं तो मुझे ऐसा कभी कुछ अनुभव नहीं आया, तो मेरे लिए बहुत सरल हो गया है, इसीलिए इतना हाँ नहीं है। और ना पहले कैसा था, अभी ना इज्जत बढ़ गई है, ऐसे वाली बात है, रिस्पेक्टफुली जो होता है ना वो चीज आ गई है, तो अच्छा लगता है कि बाबा मिलने के बाद एक दूसरे को जज करना या अंडरस्टैंड करना। जब मैं यहाँ पर सेवा के लिए आई हूँ तो मेरे 3.5 साल की बच्ची को वो संभाल रहे हैं, दिवाली में वो 3 साल की थी तब भी वो, जब मुझे छुट्टियां लगते तो मैं इधर भाग के आती हूँ तब वो संभालते, तो अच्छा लगता है। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा टॉपिक था योग तलवार का धार है तो उससे क्या क्या मारेंगे। तो उससे पहले तो मुझे लगता है यहाँ भाई ने बता दिया कि याद क्या है, और बहन ने बता दिया कि धारण क्या करना है, नहीं क्या करना, माना ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, बस उसको मॉडिफाई करके मुझे थोड़ा बताना है कि याद से वो जो धार है उससे क्या क्या मानना है। तो मैं शॉर्टली बता दूंगी, क्यों ना, बहुत एक्सप्लेन हो गया है इसका। पहली बात बाबा ने बोला कि याद पाप को काटता है, जो जंक लगा है उसका काटता है, अर्थात हमारे जो विकर्म है, आसुरी गुण है, जो पुराने संस्कार है उसको उद्धार मारता है। फिर आया बाबा बोले कि याद में ही शांति है, तो अशांति जो है हमारे पास जो आता है किसी के द्वारा या हमारे द्वारा, वो भी याद से शीतल करता है उसको। फिर बाबा ने बोला कि जो देवी गुण आपको, याद से ही आपकी देवी गुण आते हैं, तो ऑटोमेटिक उसका जो नेगेटिव ऑपोजिट साइड है वो मर ही जाता है। फिर आया कि पुराने संस्कार तो हो गए और ये क्या, हाँ बाबा ने बोला कि फालतू चिंतन भी, याद से फालतू चिंतन का मतलब उसको टाइम नहीं है, क्यों ना बाबा को टाइम दे रहे हैं ना, उसके याद में है तो फालतू चिंतन वेस्ट ऑफ टाइम कुछ नहीं है अभी। फिर बोले कि याद से ही आपके सॉरी हाँ वो तो पवित्रता आ जाती है, फिर सतो प्रधान बन जाते हैं वो भी है। और एक वरदान में जो था बाबा जो याद में बोले अचल अडोल, अर्थात अस्थिरता जो हमारे भीतर रहती है हर चीज को फेस नहीं करने का, वो भी मारता है, उधार उसको मार देता, निश्चित कर देता है, अचल कर देता है, अडोल कर देता है। फिर आया कि रहम दिल बनने का, तो बाबा जितना याद हमारा बढ़ता है औरों के प्रति हमारी सुभावना उतनी बढ़ती है, तो अचानक की पाठ हो या किसी के अगर कोई फेस करते हैं नेगेटिव का, तो ऑटोमेटिक वो हमारे पर क्या होता है, वो मर्सीफुल रह ही जाता है, क्यों ना याद उसकी रहती है। और सबसे बड़ी बात जो बाबा ने बोला और मेरी सबसे अपनी धारणा की है कि अनोखों की याद अनोखे की आकर्षण से मुक्त रहते हैं, क्यों ना उस एक से आशिक के मान मासुक के साथ हम आशिक हैं, तो उसकी या प्यार में हम लोग अपना यहां चलते हैं करते हैं, लेकिन बुद्धि किसी में नहीं रहती। ओम शांति।